बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है हमारी निगाह अल ब्लॉग स्टूडियोज़ में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान जनाब नासिर अब्बास शिराज़ी हैं। आप सेक्रेटरी सियासियात हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के। आज हम इनसे मिल्लत को दरपेश मुश्किलात के ऊपर बातचीत करेंगे और हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होगा आइंदा आने वाले इलेक्शंस और उस हवाले से मजलिस वहदत मुस्लिमीन की पॉलिसी। अक्सर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं।
शुक्रिया।
सबसे पहला सवाल ये है कि पैदर पै वाक़ियात ने साबित कर दिया है कि हमारी एजेंसियां या तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं या इन वाक़ियात में ख़ुद मुलव्विस हैं। इस सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, पहले तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि क्वेटा में पहला इंसिडेंट हुआ और बार बार ये कहा जा रहा था हमारे इदारों की तरफ से भी, यानी जो पार्टियां थी शिया वहाँ उनकी तरफ से भी, हज़ारा लोगों की तरफ से भी, कि अगले किसी मुमकिन इकदाम को रोकने के लिए एफर्ट्स की जाएँ, स्टेप लिए जाएँ। और फ़ौज को बुलाने का बुनियादी मकसद भी जो वहाँ पर था वो यही था, या गवर्नर राज को लगाने का बुनियादी मकसद भी यही था। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद नेगलिजेंस होती है, इंतहा की गफलत होती है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये लोग मुलव्वस होते हैं तो उसमें भी कोई मुजायका नहीं है, और प्रैक्टिकली एक दूसरा उससे भी ज़्यादा ताकतवर धमाका होता है। अब दूसरे के बाद तो कोई हुज्जत तमाम होने वाली कमी बाकी नहीं रह गई। इसके बावजूद कि जब हम लोग मुतनब्बे कर रहे हैं, वहाँ के मकामी लोग मुतनब्बे कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो इन मामलात को समझते हैं वो मुतनब्बे कर रहे हैं, कोई मेयर्स नहीं लिए जाते, कोई इकदाम नहीं किए जाते, और अब एक तीसरा सानिया जो है वो रुनमा होता है। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया जाता, अगर पाकिस्तान में मिलिटेंसी को रोकने के लिए बहुत सराहत के साथ इकदाम नहीं किए जाते और पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारे इस हवाले से अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित नहीं करते, तो आप यकीन रखें कि ये तीन पे रुकने वाली बात नहीं है, ये चौथा धमाका भी होगा, ये पांचवा धमाका भी होगा और हमारा मुल्क जो है वो खाक और खून में लिपटता चला जाएगा।
मौजूदा जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसके वजूहात क्या हैं और इसके सद्देबाब के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?
पहली बात तो ये है कि ये एक जो ऐसी स्ट्रिंग है कि जिसके नतीजे में हम किसी एक जगह पर भी कोई इकदाम देखते नहीं हैं। कोई गैर मामूली सूरत हाल है, क्या मुल्क के लिए गैर मामूली सूरत हाल नहीं है? लेकिन हम देखते हैं कोई इकदाम पाकिस्तान के हसास शहरों के अंदर नहीं है, अभी तक नहीं किया गया। और अब मुझे ये लग रहा है कि अब आइंदा अगर कोई वो होता है तो उसके भी रोकने के लिए इकदाम। असल ये है कि आपने कितनी कॉन्शियसनेस दिखाई है, कितनी पोलिटिकल विल दिखाई है, कितनी आपने इदारों ने स्टैंड दिया है। आपने जैसे पहले वाक़े से पहले चीज़ें थीं उससे भी कमतर उल्टा लॉ एनफोर्समेंट के इदारों का काम जो है वो सामने आया है, तो फिर प्रैक्टिकली दहशतगर्दों की हौसला अफजाई है। दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करना है और दहशतगर्दों को ये बावर कराना है कि वो जिस वक्त चाहें पाकिस्तान के अमन और सलामती के साथ जैसे चाहें खेलें, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और चूँकि मकतब मोहम्मद आले मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले लोग एक सॉफ्ट टारगेट हैं, लिहाजा इनको जहाँ जी चाहे निशाना बनाया जाए और यूँ पाकिस्तान की सालमियत से भी खेला जाए और इसमें पाकिस्तान का जो फितरी दिफा है मकतब अहले बैत उसको भी निशाना बनाया जाए, तो एक तीर से दो शिकार हो। मैंने पहले भी बात की है, विल का मसला है, नाकाम हो रही हैं इसलिए कि करना नहीं चाहती। वो कौन सा स्टेप है जो इन्होंने उठाने की एफर्ट की है और फिर फेलियर हुआ है? अब्बास टाउन के इलाके में या कराची के अंदर वो कौन सा स्टेप है जो लिया गया है, वो कौन सा ऑपरेशन है जो किया गया है, वो कौन से कराची के अंदर और कराची में बाहर से कराची के अंदर दाखले और खारजे के रस्तों के ऊपर वो कौन से बैरियर्स हैं जो बनाए गए हैं, वो कौन से मेयर्स हैं जो लिए गए, कोई ऐसी चीज़ तो हुई ही नहीं है। तो जब आप करेंगे ही कुछ नहीं तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि दहशतगर्द आएं और पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करें और जैसे चाहें कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाएं, तो ये आप दावत दे रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं।
अच्छा साहब, ये फरमाएं कि पंजाब हुकूमत के लश्कर जंगवी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन इस सलामती के कौमी सलामती के इस इतने बड़े मसले को हल करने की बजाय जो वफाक की हुकूमत है और पंजाब हुकूमत है ये दोनों आपस में एक सियासी खेल खेल रहे हैं, तो आप इस खेल की क्या वजूहात देखते हैं?
ये एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे, ये शियों के खून के साथ भी खेल रहे हैं। क्या कराची के अंदर रेंजर्स जो है वो किसके अहकाम के साथ वहां पर एक्टिव होती है? वजारत दाखिला के अहकाम के साथ। पंजाब के अंदर वजारत दाखिला अपने अहकाम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती क्या? अगर वजारत दाखिला चाहे, अगर रहमान मलिक एंड कौज चाहें, तो क्या वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर सकते? वो पंजाब को, पंजाब तो खुद मुजरम है, इसमें कोई शक नहीं है, पंजाब की हुकूमत भी मुजरम है, पंजाब के इदारे भी मुजरम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वो मुजरम है, ये इक्वल मुजरम है, और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करके गोया एक खेल खेल रहे हैं जिसमें असल जो नुकसान हो रहा है, असल जो खून बह रहा है वो मिल्लत तशय्यु का बह रहा है, हमारे खून के ऊपर ये एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है इन दोनों के अंदर। वो कौन सा इकदाम है जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है? बलूचिस्तान के अंदर तो पीपी की अपनी गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान के अलावा कराची के अंदर भी तो पीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, वहां कौन से स्टेप लिए गए? या जो वाकयात हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान जहां पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है उसके रस्तों के अंदर हुए, कौन सा स्टेप वहां पर लिया गया जिसके नतीजे में आइंदा के लिए एक चेक क्रिएट हो जाए कि आइंदा के लिए गाड़ियां सेव हैं, आइंदा के लिए जब एक मामला हो जाता है तो कम अज कम ये तो नहीं होना चाहिए ना कि उस मामले की कोई रेपुटेशन हो, लेकिन हम वहां देखते हैं एक गाड़ी के साथ होता है, फिर दूसरी के साथ होता है, फिर तीसरी के साथ होता है। इसका मतलब है आप उनको अलाउ कर रहे हैं मेयर्स न लेकर आप, और यही सवाल है कि क्या हमारे वो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे के जो ये दावा करते हैं कि उन्हें अपने कंट्री को सेव करना है, बॉर्डर्स के ऊपर खतरा कहाँ है इस वक्त? क्या बॉर्डर्स के ऊपर खतरा है? यह खतरा विद इन कंट्री है। जब तक आप खतरे को खत्म नहीं करेंगे मुल्क एट स्टेक रहेगा। मुल्क कभी भी, बहुत कम ऐसा हुआ है, कोई भी दुनिया की ताकत किसी मिल्लत के खिलाफ नहीं लड़ सकती। पाकिस्तानी मिल्लत के खिलाफ कोई मुल्क जारहियत करे वो चंद दिन का तो कोई छोटा मोटा वो इस्तफादा कर सकता है, लेकिन जवाबी मिल्लत के साथ जो रिटेलिएशन मिल्लत की तरफ से आएगी वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। जो खतरा है वो पाकिस्तान के अंदर है। जब हम खुद एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, हालत जंग में होंगे, तो ये खतरा है, और ये खतरा है अभी बना नहीं है, ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि बाहर से लोग आते हैं वो ये आप क्या समझते हैं, ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ किया गया टनों के हिसाब से, आप क्या समझते हैं ये सादा चीज़ है, इसका कलेक्ट करना कोई मामूली बात है? आप क्या समझते हैं कि इसको फिर एक ऑपरेटिव सेटअप के अंदर लाना ये कोई सिंपल बात है? इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, ये टेक्नोलॉजी गाँव और देहातों के अंदर नहीं होती, ये वाना वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके पीछे मुल्क हैं, इसके पीछे मुख्तलिफ इदारे हैं, इसके पीछे हमारी नेगलिजेंस गफलत भी है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमारे इदारे ये चाह रहे हैं कि ये हो, वो अलाउ कर रहे हैं उनको, तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है।
वो कहते हैं ना कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, चलें देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेटा और कराची के वाक़यात का खुद नोटिस लिया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट ने जो नेगलिजेंस की है सोमोटो नोटिस न लेकर कोहिस्तान के हवाले से, पारचनार के हवाले से, ये उसका खामियाजा है जो इस वक्त हमें भुगतना पड़ रहा है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि चले मैं इसे फिर भी एक खुशाइंद इकदाम कहूँगा कि चलें आप मजबूर हुए, आपने स्टेप लिया, लेकिन अब जो चेक है वो चेक ये होगा कि जैसे आप लेटर लिखवाने वाले मसले पर स्टैंड लेते हैं और उस पर वजीर आजम को घरों में भेजते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस अपने स्टैंड को और कहते हैं कि अगर दोबारा भी कोई वजीर आजम को घर जाना पड़ता तो वो जाएगा, लेकिन हम इस पे जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे, तो हम ये देखना चाहेंगे कि इन तमाम सो मोटो नोटिस के नतीजे में वो कौन से टेंजिबल स्टेप्स हैं कि जो कोर्ट डिसीजन की सूरत में देती है, और अगर गवर्नमेंट उन स्टेप्स को नहीं लेती और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करती तो वो तो इन्हें अदालत के जुमरे में भी उन्हें मजबूर होना पड़े कि हुकूमतें या हुकूमतें जो है वो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगी या उन्हें अदालती अहकाम के ताबे अमल करना पड़ेगा। ये चेक है इस वक्त, और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चेक को अगर मैं मद्देनजर रखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ।
श्रीराज साहब, इलेक्शन बहुत करीब हैं, MWM की इस हवाले से क्या पॉलिसी है?
देखिए, हमारी जो रियलाइजेशन है ना उसमें ये बात हमारे लिए बड़ी अहम है कि शियों के साथ ये जो कुछ हो रहा है क्यों कोई पार्टी उसकी पेन नहीं ले सकती, क्यों किसी पार्टी के अंदर इस मौजू के ऊपर स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है या नहीं लेना चाहती? तो बड़ा क्लियर है कि हमारी असल जो गुलामी है ना वो हमारी ये गुलामी है, हमारी असल गुलामी हमारी सियासी गुलामी है इस वक्त, ये मौजूदा सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूँ। मिल्लत तशय्यो पाकिस्तान को फुटबॉल बना दिया गया है, आपको या नून की ठोकर खाना है या पीपी की ठोकर खाना है या MQM की ठोकर खाना है या मुख्तलिफ सोएंड सो जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है, आपके आपके मुकद्दर में वो ठोकरें खाना लिख दिया गया है, आपके पास कोई खुद कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारी मिल्लत को बेकदर कर दिया गया है, इसे ये एहसास दिलाया गया कि ये कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन का असल सियासी एजेंडा ये है कि वो अपनी मिल्लत को खड़ा करेगी, उन्हें ये स्टैंड दिलाई गई कि 5 करोड़ की पाकिस्तानी मकतबे मोहम्मद वाले मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले शिया पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं, चाहे जाए कि वो अपनी तकदीर ना बदल सके। हम उन्हें सियासत के मैदान के अंदर वो इज्जत और कुदरत अदा करना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की सॉलिडारिटी का भी दिफा हो, पाकिस्तान की जियोग्राफी का भी दिफा हो और पाकिस्तान के नज़रिए का भी दिफा हो। और ये कोई और नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए तमाम चीज़ें देख ली हैं, तमाम इदारे देख लिए हैं। ये काम को करने के लिए इस वक्त सिर्फ मकतबे मोहम्मद आले मोहम्मद है जिसे सामने आना पड़ेगा। मजलिस वहादत अपने साथ मरबूत इन लोगों को कंसोलिडेट करके, इंटीग्रेट करके दरअसल इस हदफ को अचीव करना चाहती है। और दुश्मन जो दूसरा काम कर रहा है कि वो शिया और सुन्नी डिस्कॉर्ड जो है उसको डेवलप कर रहा है, हमारा काम यह है मजलिस वहादत का कि वो इस बमुसम बने, शिया और सुन्नी दोनों हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टेरियनिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जाती है उसके मुकाबले में प्रैक्टिकल विल के साथ खड़े हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम ऐसी फिजा करने में डे टू डे कामयाब हो रहे हैं जिसके नतीजे में दहशत गर्द भी गाली बनते जा रहे हैं, दहशत गर्दों के सपोर्टर भी गाली बनते जा रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने की पोजिशन में नहीं है। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में ऐसा सोशल और ऐसा पोलिटिकल एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे कि दहशत गर्दी के पैरासाइट्स को, पैरासाइट्स ऐसा वो कीड़ा होता है जो किसी और के ऊपर पलता है, किसी और बदन के ऊपर पलता है, इनको पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर हम पनपने की इजाजत नहीं देंगे। इनके लिए हम पॉलिटिकल एक्सेस को खत्म करेंगे, इनके लिए इंशाल्लाह ताला सोशल एक्सेस को हम खत्म करेंगे, इन्हें मुआशरे के अंदर तन्हा करेंगे, इन्हें हम उस बाउंड्री के पार लाएंगे कि जिस पार सिर्फ टेररिस्ट होते हैं और जो सलूक टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो इनके साथ जो है वो किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मजलिस वहादत जो है इस हवाले से कंट्री वाइड रोल प्ले कर रही है और हम अपने मकतब के लोगों को एक शनाख्त अता करना चाहते हैं। हम शिया सुनी वहादत के साथ इस शनाख्त को इंशाल्लाह डेवलप करेंगे और ये पहली मरतबा होगी कि हमारा शिया वोट अनकंडीशनल किसी पार्टी को नहीं जाएगा। जिन जगहों पर हमारे से मरबूत उम्मीदवार मजलिस वहादत के सपोर्टेड उम्मीदवार नहीं खड़े होंगे वहाँ पर भी जो हमारा वोट होगा मजलिस वहादत का और उससे मरबूत मुख्तलिफ इदारों का जो वोट होगा वो अनकंडीशनल नहीं जाएगा, विद टर्म्स एंड कंडीशन जाएगा जिसको भी जाएगा। और वो टर्म एंड कंडीशन पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी, इस्लाम की डिग्निटी की प्रिजर्वेशन और इंशाल्लाह इस सोशल फैब्रिक जिसके अंदर शिया और सुन्नी बाहमी तौर पर इकट्ठे रहते हैं इसके डिफेंस के लिए होगा और इंशाल्लाह हम इसको मैनेज करेंगे।
शिराज साहब, इमरान खान ने पहली मरतबा खुलकर लश्कर जंगवी की मजम्मत की है, तो क्या जो MWM ने कहा था कि हम तकफीरी ग्रोहों को सियासी जमातों में और पार्लियामेंट में नहीं घुसने देंगे, तो क्या आप समझते हैं कि MWM की ये पॉलिसी कामयाब हो रही है?
देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, कराची के अंदर हम 4 घंटे के नोटिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं जो मिनी APC में बदल जाती है। 12 पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप आपके साथ खड़ी होती है और आप डिक्लेयर करते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक गैर एलानिया इत्तेहाद वजूद में ला चुके हैं। और उसके बाद तमाम पार्टियां मजलिस वहादत से मुतालबा करती हैं कि मजलिस वहादत फ्रंट पे आए और एक एलानिया इत्तेहाद वजूद में लाने की एफर्ट की जाए। हम इंशाल्लाह मैनेज कर सकते हैं ये चीज़ें। फिर ये कि हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसके अंदर वो तमाम लोग जिन्होंने किसी न किसी तौर दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की है वो डिफेंस पे चले गए, उनके लिए अब ऑफेंस पॉसिबल नहीं रहा। हमने पूरी दुनिया के लिए खोल के रख दिया है कि वो APCs जिनके अंदर से लफ्ज़ दहशतगर्दी को नाअमनी के जरिए से रिप्लेस किया गया है और दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई है, उसका क्या नतीजा मिला है इस सोसाइटी को? और हम इंशाल्लाह जो सोशल चेंज ला रहे हैं, जो पॉलिटिकल चेंज ला रहे हैं, इसके नतीजे में अमलन दहशतगर्दों के पास कोई चारा नहीं होगा मगर ये कि वो आइसोलेट हों। और इंशाल्लाह ताला हम उन हाथों को भी कि जो बाज़ मुसलमान ममालक के नाम पर और बाज़ नाम लिहाज मुसलमान कंट्रीज़ अमेरिका की ईमा और आशीर्वाद पर पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म क्रिएट करने के लिए और मकतबे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हमले करने में मुलव्वस हैं, हम इनको भी बेनकाब करेंगे। ये पाकिस्तान की सॉलिडारिटी का मसला है। इन फॉरेन हैंड्स को पाकिस्तान के अंदर हम बेनकाब करेंगे जहां डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है या गल्फ के वो कंट्रीज के जो अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरी दुनिया के अंदर मीट करते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान में अमेरिका के मफादात के लिए एक्टिव हैं, हम इंशाल्लाह इनको भी बेनकाब करेंगे। ये धरती पाकिस्तान के लोगों की धरती है और इसकी डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। किसी फॉरेन कंट्री का, कोई भी कंट्री हो, उसका पाकिस्तान के अंदर ऐसा रोल हम नहीं देखना चाहते।
शिराज साहब, मौलाना फजल रहमान ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और हुकूमत से तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया, तो क्या इस मसले का यही हल है कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं?
जी हाँ, वो उसका जवाब तो आपने देखा ना, उस फार्मूले का विद इन डेज कि अमूमन होता यह है कि कोई सीज़ फायर होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि वो CBMs लेते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं। आपने क्या देखा? आपने थोड़ी सी वीकनेस का मुजाहरा किया, पॉलिटिकल विल के अंदर एक डेंट डला, और आपने देखा कि उन दहशतगर्दों ने आपको क्या रेस्पॉन्स दिया, एक और हमले के जरिए से रेस्पॉन्स दिया। जब तक दहशतगर्दों की हौसला अफजाई के लिए माहौल क्रिएट किया जाता रहेगा, उस वक्त तक ये सूरत एज इट इज़ बाकी रहेगी। APC, मैं समझता हूँ कि वो APC दुरुस्त है कि उसमें तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई हैं, ये एक रख रखाव का मसला था जिसकी वजह से ये सारी पार्टियां शामिल हुई हैं, और जाहिर है बाज़ पॉलिटिकल मोटिव भी थे कि आइंदा के पॉलिटिकल सेटअप में एक दूसरे की हमदर्दियों लेने का मसला भी था। तो मैं उसे इस लिहाज से कामयाब APC नहीं समझता, वो गैदरिंग के लिहाज से कामयाब APC थी, वो टारगेट्स के लिहाज से कोई अच्छी APC नहीं थी। और आपने देखा है कि आप प्रैक्टिकली सिविल सोसाइटी और हर जितनी लेयर्स हैं हमारे सोसाइटी की, उनमें ये साबित हुआ है कि इस APC ने दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की है, और दहशतगर्दों को बिलवास्ता तौर पे एक्सेस देने की और उनको उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। बाकी ये देखिए, इमरान खान साहब की आपने बात की है, मैं बिल्कुल उनकी सताइश करता हूँ कि उन्होंने जो स्टैंड लिया, खुलकर सामने आए, वो यकीनन उसके आफ्टर उसके उनके लिए भी बाज़ मनफी वो पहलू भी होंगे, लेकिन जब तक ये स्टैंड नहीं लेंगे इस मुल्क की हिफाजत नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि इसमें मजलिस वहादत की कामयाब सियासी हिकमत अमली का भी एक बड़ा अमल दखल है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तनजीमें और ऑर्गेनाइजेशन ये पोजीशन लेने पर मजबूर हुई हैं।
शिराजी साहब, क्या मजलिस वहादत मुस्लिमीन आइंदा आने वाले इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी?
हमारी वर्किंग कंप्लीट है, और इंशाल्लाह ताला अगर शूरे आली ने हमें गो अहेड दिया तो हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकें, जो हमने एक अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर अहम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अगर इजाज़त ना हुई, उसमें कोई अमेंडमेंट रही, तो फिर यकीनन हम जो हैं वो पॉलिटिकल रोल तो प्ले करेंगे, और हमारे से मरबूत जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो भी रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिर शायद हम उस तरह का रोल प्ले नहीं करें कि जो एक साइन और सिंबल के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से होता है, लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा, रोल प्ले किया जाएगा, इंशाल्लाह मुस्बत उम्मीदवारों को असम्बली मिलाने की एफर्ट की जाएगी, और इंशाल्लाह तकफीरी ग्रोहों को पार्लियामेंट से आउट रखने के लिए हर तरह की फालियत जो वो की जाएगी इंशाल्लाह।
आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारी मिल्लत बहुत से गुनागु मसाइल का शिकार है, MWM के पास इन मसाइल से निकलने के लिए क्या हिकमत अमली है?
देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो, और खुदा कोई ऐसा इम्तिहान भी नहीं देता कि जिससे निकलने का कोई वे आउट ना हो। ये मुश्किल नहीं है। अब मसला है विल का, हमारे इदारों की कैपेसिटी और सलाहियत बिल्कुल है, फ़ौज के पास सलाहियत है, रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी है, अब बुरे कार ना लाएं तो एक अलग बात है, लेकिन है इसी तरह हमारे इदारों के अंदर भी ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेड्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो ऐसे लोग बैठे हैं कि जो अपनी इस कैपेसिटी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, प्रैक्टिकल शेप में सामने नहीं आने देते। अगर हमारे इदारे अपना अपना शोभा जाती काम शुरू कर दें और बड़े भरपूर तरीके से उस काम को करें, और उसमें किसी तरह के दबाव के अंदर ना आए, पाकिस्तान के मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के जाब्तों पर प्योरली अमल कराए, और किसी को आइन से तजावज़ न करने दे, आइन की 62, 63 के ऊपर भी अमल दरामद कराए, अफराद की जो स्क्रीनिंग के बाद जो उन्होंने प्रैक्टिकल मूव चलानी है उसके हवाले से भी अमल दरामद कराए, और जितने भी इससे रिलेटेड वो एक्ट हैं उनके ऊपर अमल दरामद। ये एक काम। जुडिशरी अपना वो इंडिपेंडेंट रोल प्ले करे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना दिया जाए। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे अपने अपने घरों में बैठने की बजाय मैदान में निकले, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए पूरे पाकिस्तान में एक ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए, और हमारे जो सियासी शख्सियात हैं बिलखसूस वो पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियल मरले में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी चेंज लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तमाम इदारे वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए दहशतगर्दी के इस नासूर को रोक सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक छोटा सा काम करके आप इस मसले को हल कर सकते हैं, तो वो मोस्ट सिंपल और मोस्ट कन्वीनियंट वे है, वो है पाकिस्तान में फॉरेन हैंड्स को कट कर दें, काट दें। ये देखें, जब इनकी फीड बंद हो जाएगी, जब इनकी खुराक बंद हो जाएगी, जब इनको मिलने वाली सप्लाईज बंद हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से खुश पत्तों की तरह झड़ जाते हैं। इनकी कोई बेस नहीं है, इनकी आवाम के अंदर कोई रूट्स नहीं है। ये 30 साल इन्होंने मेहनत की है लेकिन आवाम के अंदर इतनी रूट्स भी नहीं डेवलप कर सके कि किसी एक मंतके के अंदर शिया सुन्नी फसाद कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह शिया और सुन्नी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये तमाम एफर्ट जो सरमाए असले और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए की गई हैं, ये ताहाल वो नतीजा नहीं दे सकी हैं। जितनी उसके ऊपर सरमाया गुजारी की गई है उतना नतीजा जो है वो नहीं दे सकी हैं। और इंशाल्लाह हम अपने एक्ट के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में अपनी फालियत के ज़रिए तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर और तमाम जिंदा ज़मीर लोगों को अपने साथ लेकर पाकिस्तान में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि या इदारों को मजबूर होना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपना रोल प्ले करें, या अवाम मैदान अमल में निकल के इदारों को मजबूर करेंगे कि वो पोजीशन लें जो पोजीशन इस वक्त आइनी तौर पे उन्हें लेनी चाहिए, और अगर नहीं लेंगे तो फिर इदारे अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेंगे।
शिराज साहब, आपकी आमद का और आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, उम्मीद है आपने इस प्रोग्राम से खातर खा फ़ायदा हासिल किया होगा और सूरत हाल आप तक वाज़े हो चुकी होगी। आइंदा किसी और मौजू और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।